الحمد لله اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد आज की मजलिस 3 4 दिन बाद हो रही है। शायद इसका एक मुख्तसर सफर था, इसकी वजह से पिछले 4 5 दिन से मजलिस मौकूफ थी। बल्कि वादा तो यही था कि कल मजलिस शुरू हो जानी थी, मगर परसों रात वापसी सफर से बहुत देर से हुई, लाइट भी डिले हो गई, तो जिसकी वजह से कल सुबह की मजलिस जो है वो मौकूफ करनी पड़ी। और आज इंशाल्लाह आज ही मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और आज रात को भी सफर पर रवानगी है, तो कल से फिर 15 दिन 14 15 दिन के मौके जो है ये मौकूफ रहेगी। रात इंशाअल्लाह उम्रे का सफर है, चला आफियत फरमाए। पिछली मजालिस के अंदर हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वो नुस्खा जो तमाम खानकाहों पर तमाम मशाइख के नजदीक मोतबर है इस्लाह के लिए, और वो 4 चीजों में कमी करना है। किल्लते ताम, किल्लते कलाम, किल्लते मनाम और किल्लते इख्तिलात माल अनाम। तो 4 चीजों में कमी करना, खाने पीने में कमी करना, गुफ्तगू में कमी करना, नींद में कमी करना और लोगों से मेल जोल में कमी करना। आमतौर पे कहा तो ये जाता है कि ये सालिकीन तरीकत के लिए इस्लाह का नुस्खा है, तो सच्ची बात यह है कि अगर कुरान और हदीस को देखा जाए तो ये सिर्फ सालिकीन तरीकत के लिए नुस्खा नहीं, ये तमाम मुसलमानों के लिए नुस्खा है। चुनाचे पिछली मजालिस में हमने किल्लते ताम पे तफसील से गुफ्तगू की थी और किल्लते कलाम पे यानी गुफ्तगू थोड़े करने के ऊपर हमने गुफ्तगू शुरू की थी, और इस हवाले से हमने ये अर्ज किया कि ये थोड़ी गुफ्तगू करना या खामोश रहना ये एक अच्छी सिफत है। नबी अलैहि सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहि सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाया है उसे चाहिए कि वो खैर की बात कहे, और अगर खैर की बात नहीं कर सकता है तो खामोश रहे। खामोश रहना एक अच्छी चीज है। पिछली मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि खानकाहों पे मशाए खामोश रहना सिखाते भी थे, उसकी प्रैक्टिस भी करवाते थे। सालिकीन को कहा जाता कि थोड़ी देर खामोश रहो। खामोश रहने के 2 फायदे हैं, एक तो ये कि इंसान जुबान से बहुत सारे गुनाह करता है, खामोश रहने वाला उन गुनाहों से बच जाता है। दूसरा फायदा यह है कि खानकाहों पे जो बड़ी चीज सिखाई जाती है और जो हर मुसलमान के लिए ऑक्सीजन का काम करती है वो है अल्लाह की याद, और ये अल्लाह की याद भी वही करेगा जिसको थोड़ा खामोश रहने की आदत होगी। हर वक्त टट 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 करता रहेगा तो फिर अल्लाह को कैसे याद करेगा। तो खामोश रहने वाले बंदे के लिए अल्लाह को याद करना आसान, जिक्र करना आसान, इसलिए मशायख के यहाँ इसको बड़ा एहतमाम से सिखाया जाता है कि किस तरह जुबान को बंद करना है, बकदर जरूरत इस जबान को इस्तेमाल करना है। सच्ची बात यह है कि जुबान जब बंद होती है तो इंसान फिर रिफ्लेक्ट कर पाता है कि जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं उसमें क्या बोल रहा हूं, सही बातें बोल रहा हूं या गलत बातें बोल रहा हूं। जो हर वक्त इस जुबान को चला रहा है वो सोच भी नहीं रहा है कि मेरी जुबान क्या कह रही है, तो मैंने सही बात की या गलत। और इस जुबान से हम गलत बातें फूंक करते, इसी जुबान से तो इंसान झूठ बोलता है। कई मरतबा इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, इसी जुबान से इंसान गीबत करता है। और गीबत तो वो गुनाह जो 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 जिना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह। इसी जुबान से इंसान दूसरों का दिल दुखाता है। हम समझते हैं ये गुनाह नहीं है। हदीसे पाक में आता है कि इंसान कभी कभी अपनी जुबान से ऐसा कड़वा लफ्ज कह देता है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन तक उसे अपने दुश्मनों की फहरिस्त में लिख लेते हैं। तो इसी जुबान से बहुत सारे गुनाह होते हैं। तो जुबान से गुनाह जो होते हैं उसमें पहला गुनाह झूठ बोलना है। और आजकल के जमाने में झूठ बोलना बहुत आम हो गया है। कई मरतबा हम उसको गुनाह भी नहीं समझते, बल्कि झूठ के लिए हमने एक बड़ा आसान लफ्ज बना लिया है ताकि ये झूठ इतना बुरा ना लगे। हम कहते हैं बहाना, तुम कोई बहाना बना दो। अगर सच्ची बात यह है कि कबीरा गुनाहों में भी अगर कोई बड़ा गुनाह है तो वो ये झूठ बोलना है। जुबान की सफाई ये बहुत नेक तरीन शख्स का काम है। हदीसे पाक में आता है कि मुनाफिक की निशानियां तीन हैं, और उसमें पहली निशानी है कि जब वो गुफ्तगू करता है तो वो झूठ बोलता है, और दूसरी निशानी कि जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो ये तीन में से दो निशानियां तो झूठ पे मबनी है, और तीसरी निशानी है जब उसको अमानत दी जाती है तो उसमें खयानत करता है। पता चला कि झूठ बोलना कोई आम सा गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम वजू फरमा रहे थे और सहाबा कराम उस वुजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे थे, बल्कि उस पानी को महफूज करके, और फिर वो पानी जो अल्लाह के नबी ने जिससे वुजू किया उसको अपने चेहरों पे लगा रहे हैं, हाथों पे लगा रहे हैं, सीने पे लगा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू मुकम्मल फरमाया और पूछा कि भाई तुम ये जो मेरा वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी है उसको अपने चेहरे पे, हाथों पे, सीनों पे क्यों लगा रहे? सहाबा कराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में लगा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, उसे चाहिए कि वो झूठ बोलना छोड़ दे। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी नेकी ही यही है कि इंसान की जुबान साफ हो, उसे झूठ ना निकले। और सबसे बड़ा गुनाह ही यही है कि इंसान की जुबान से झूठ निकल आए। तो खामोश रहना इस सीखना इसका बड़ी वजह खामोश रहने को सीखना, इसकी बड़ी वजह यह है कि जुबान से गुनाह बहुत होते हैं, उसमें बड़ा गुनाह झूठ है। और सहाबा इकराम इस झूठ के बोलने में बहुत एहतियात करते थे कि कहीं ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि जिसको झूठ कहा जाए। चनाचे मशहूर वाक्य है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक ईरानी शहजादा था, काफिर मुसलमानों के साथ बड़ी जंगें की उसने, उसने मुसलमानों को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। और हजरत उमर तक ये बात पहुंची कि जी ये बहुत जंगें कर रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है मुसलमानों को। तो हजरत ने एक फौजी दस्ता खास बनाया कि जी इसको टारगेट करना है, या तो इसको मार दिया जाए या इसको पकड़ लिया जाए, इसको रोकना जरूरी है। तो वो जो था फौजी दस्ता था, उसने किसी न किसी तरह से उस ईरानी शहजादा जो था उसको पकड़ लिया। और जब वो काबू में आ गया तो उसको हजरत उमर के सामने लेके आया कि जी ये वो है जिसने बहुत सारे मुसलमानों को हलाक किया, बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो हजरत उमर ने फरमाया बस बहुत अच्छा है, जल्लाद को बुलाओ और उसका सर कलम करो। तो जल्लाद आ गया अपनी तलवार लेके और इस ईरानी शहजादे को अभी कत्ल करना ही था। तो हजरत उमर ने उससे पूछ लिया कि भाई मरने से पहले कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है, कोई तेरी ऐसी जरूरत? ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है। उसने कहा जी एक प्याला पानी पिला दे। हजरत उमर ने फरमाया कि भाई एक प्याला पानी इसके लिए ले आओ। पानी का प्याला लाया गया और इसने पानी का प्याला अपने हाथ में जो लिया तो हाथ कांप रहे थे, पी नहीं रहा है, देख रहा है इधर उधर। हजरत उमर ने पूछा कि पानी क्यों नहीं पी रहे? उसने कहा जी मुझे डर है कि अगर ये पानी मैं पी रहा होऊंगा उस वक्त ये जल्लाद मेरे सर पर तलवार न चला दे। हजरत उमर ने फरमाया कि मैं तुझे जिम्मेदारी देता हूं कि जब तक तू ये पानी नहीं पी लेगा तब तक तेरे सर पे कलम नहीं चलेगा, तेरे सर पर तलवार नहीं चलेगी। शहजादा जहीन था, तेज था, जैसे उसने हजरत उमर की ये बात सुनी उसने सारा पानी जमीन पे डाल दिया। और सारा पाना जमीन पर डाल के कहता है कि देखें आपने कहा था जब तक ये पानी नहीं पीऊंगा तलवार नहीं चलेगी, अब तो ये पानी पिया भी नहीं जा सकता। अरे तो उमर ने फरमाया कि हाँ बात तो यही की थी कि जब तक ये पानी नहीं पियोगे तलवार नहीं चलेगी। तो उमर के इर्द गिर्द जो मुसलमान जो उनके वो जरा थे जो उनके साथी थे, उन्होंने मशवरा दिया कि मतलब ये कोई वजह है, ये तो उसने हीला बहाना किया है बचने का, तलवार चलाए इसको खत्म करें, तमाशे कर रहा है। हजरत ने हर एक से मशवरा लिया, हर एक का मशवरा ये था कि भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसको कत्ल किया जाए। मगर हर इस मशवरे के बावजूद भी हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं, मेरी जुबान से जो कौल निकला है वो यही है कि जब तक ये पानी नहीं पिएगा इसका सर कलम नहीं किया जाए। तो जुबान से झूठ निकालने से अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने मना किया। अगर तुम्हारा फरमाया कि नहीं इसको कतल नहीं करना है, इसको छोड़ देते, मैं सोचता हूँ, तो आपने छोड़ दिया। सारे हैरान कि जी किसी को भी समझ में आ सकता है कि ये बहाना कर रहा है, मगर इस सच का उस शहजादे के दिल पे इतना असर हुआ कि उसने आगे से कहा कि जी मुसलमानों के जो अमीर मोमिनीन हैं इनके इस सच को देखकर मेरा दिल इस बात को मानने पे मजबूर हो गया है कि ये दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। इसलिए मैं अपने दीन को छोड़कर तौबा करता हूं और दीन इस्लाम को। सहाबा कराम ने बड़ी एहतियात की जुबान से किसी भी हालत में झूठ ना निकले और फिर उस सच बोलने की बरकतें समेटी है। तो जिसने सच बोल दिया बहुत ही कामयाब हो गया और जिसकी आदत झूठ की हो गई। और कहते तो हम सब यही है जी मजबूरी में झूठ बोला है, मगर ये मजबूरी फिर मजबूरी नहीं रहती, ये आदत बन जाती है हर वक्त झूठ बोलने। तो जब ये आदत बन जाती है तो इससे ज्यादा महरूम शख्स, इससे ज्यादा बदकिस्मत शख्स नहीं है कि जिसकी आदत झूठ बन जाए, जिसकी जुबान से सच खत्म हो जाए। आजकल के जमाने में झूठ बोलने वाले कुछ ऐसे भी आ गए हैं कि ये दिमागी बीमारी बन चुकी है, और ये आज से कुछ साल पहले तक तो नहीं पता था इस आदिश को, मगर कुछ ऐसे झूठ बोलने वालों से मुलाकात हुई कि पता चला कि इंसानी यानी जाहिरी इंसान ऐसे झूठ नहीं बोल सकता है, इतना ज्यादा झूठ बोलना। तो उसको डॉक्टरों की जबान में पैथोलॉजिकल लायर कहते हैं कि जी ये कुछ भी वजह झूठ बोले बगैर रह नहीं सकेगा, आपसे 5 मिनट की मुलाकात करेंगे उसमें से काफी सारे झूठ बोल देता है। बस वैसे ही उनकी एक बात सुना के वैसे बात मुकम्मल करता हूँ। दो बातें जरा बढ़ गई मगर बहरहाल, कुछ अरसे पहले हमारे यहाँ मुलाकात के लिए आते थे एक साहब जी। काम क्या करते हैं? सऊदी अरब में होता हूँ शाह सलमान साहब के साथ काम करता हूँ, बहुत बड़ी सऊदी कंपनी है, आराम को उसका हेड मुझे बना दिया गया है, तो हर 2 हफ्ते बाद अमेरिका भी जाना होता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरमैन शरीफैन की जो पूरी सिक्योरिटी है वो मेरे हवाले है, जहां जाना चाहूं जा सकता हूँ, बैतुल्ला शरीफ के अंदर भी दाखिल हो जाता हूँ। और ये आजिश भी, और हमारे मदरसे के असातिज़ा कराम, हम तो उसकी इतनी इज्जत करने लगे कि देखो अल्लाह ने इसको कैसा कबूल किया है, जब चाहे बैतुल्ला शरीफ के अंदर चले जाता है, जब चाहे सऊदी अरब चले जाता है, हर महीने में एक दो मर्तबा अमेरिका का सफर, और फिर कई सारे उसने वाकयात और गुफ्तगू ऐसी की जैसे कि शाह को वो खूब डांटते भी थे, कभी वो शाह गलत कोई फैसले करते तो जी क्या इसकी अथॉरिटी है, और कहने का अंदाज ऐसा था कि ये आजिज भी और हम सब यही समझे कि जी माशाल्लाह अल्लाह ने कबूलियत दी है ऐसी। मगर ऐसा बंदा फंस जाता है, जाहिर है किसी ना किसी वक्त तो इस टोन में खुलना है ना, तो ये एक बीमारी है। और इस आजिश की कुछ उलमा से गुफ्तगू हुई जिसको ये बीमारी लग जाती है तो शायद वो इतना ज्यादा काबिले मुजम्मत नहीं है, या शायद इतना गुनाह ना मिले क्योंकि अब वो एक जहनी बीमारी है। मगर बहरहाल आज के जमाने में पैथोलॉजिकल लायर्स, जहनी मरीज के तौर पे झूठ बोलने वाले भी सारे हो गए। अल्लाह ताला हर सूरत में इस गुनाह से महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले बस एक छोटा सा ऐलान, आज इंशाअल्लाह साजिश का सफर है, अल्लाह ताला आफियत रखे, उम्रे का सफर है इंशाअल्लाह। तो 2 हफ्ते के लिए ये मजलिस मौकूफ रहेगी और फिर इंशाअल्लाह 25-26 तारीख के बाद फिर से इंशाअल्लाह ये मजलिस शुरू हो जाएगी। आपको व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज कर दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व लिसानन ज़ाकिर व क़ल्बन ख़ाशिअ व रिज़्क़न वासिअ و الشفاء لكل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.